أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث اصول دین در تفسیر المیزان میں چل رہی ہے، اور ہماری پہلی بحث کا عنوان توحید پروردگار ہے. سب سے پہلی بحث جو توحید میں ذکر کی ہے وہ خداوند متعال کے وجود کے بارے میں ہے، کہ آیا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں. اس میں پہلا جو طریقہ ذکر کیا، یا استدلال یا برہان جو بھی نام دے لیں، اس کو برہان فطرت کا نام دیا. اور دوسرا جو برہان ذکر کیا کل آپ کی خدمت میں، اس کا نام ہے برہان امکان و وجوب. کل جس طریقے سے میں نے برہان کو بیان و وضاحت کی ہے، اگر اس بیان کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا بہترین نام جو ہے وہ برہان غنا و فقر ہے. اگرچہ برہان امکان و وجوب میں کا نام لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ برہان امکان و وجوب پہلے ایک طریقے سے بیان ہو چکا ہے، مثلا فارابی سے ابن سینا سے لے کر ملا صدرہ تک، اس کا ایک اپنا خاص بیان ہے کہ جو مختلف فلسفی اور کلامی کتابوں میں ذکر ہوا ہے. میں نے چونکہ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے برہان کو بیان کیا ہے، لہذا ابن سینا یا فارابی کا بیان کردہ جو برہان امکان و وجوب ہے اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ملا صدرہ نے قرآن سے الہام لیتے ہوئے انہی آیات سے کہ جو کل آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، برہان امکان و وجوب کو انتہائی عمیق انداز میں بیان کیا، پہلے سے دقیق تر انداز میں بیان کیا. جو نقائص پچھلے برہان میں کہیں نظر بھی آتے تو وہ اپنی اس نئے بیان میں، نئے برہان کے ذریعے اس کو حل کیا ہے. میں اہل علم اور وہ کہ جو فلسفے سے آگاہ ہیں ان کے لیے فقط اشارہ کرتا ہوں، ممکن ہے جنہوں نے فلسفہ نہ پڑھا ہو، آگاہ نہ ہو اس سے، وہ اس مطلب کو نہ سمجھ پائیں، ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس مطلب کو حتماً سمجھیں. ابن سینا نے جو برہان امکان و وجوب کو بیان کیا اور ملا صدرہ تک یہ برہان چلتا آیا، وہاں پر امکان سے مراد امکان ماہوی تھا، لیکن ملا صدرہ نے جب اصالت الوجود کی بنیاد رکھی اور پھر اپنے پورے فلسفے کو اس کے اوپر قائم کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امکان کو ماہوی سے نکال کر وجودی کی طرف لے آئیں، یعنی امکان وجودی کہ جس کو قرآن نے فقر سے یاد کیا ہے. فقر انسان کے وجود کا حصہ ہے، اس کی ماہیت کا نہیں، چونکہ ماہیت اعتباری ہے ملا صدرہ کے نزدیک. یہ دقیق فرق موجود ہے. اسی وجہ سے ہمیں جب براہین ذکر کریں تو تفکیک اور جدائی رکھنے کے لیے اصطلاحوں کا استعمال جو ہے وہ جدا کرنا چاہیے. برہان امکان و وجوب جب کہا جائے تو اس میں ہم ابن سینا و فارابی و دیگر فلاسفہ نے جو برہان قامہ کیا ہے اس کو بیان کریں، اور ملا صدرہ کا اگر برہان ذکر کرنا ہو تو اس کا نام رکھا جائے برہان الغنا والفقر. یہ تھوڑی سی وضاحت بیان کرنا ضروری تھی، उन दोस्तान के लिए कि जो फलसफे से आगाही रखते हैं ताकि मतलब कामिल तर हो जाए। इसके अलावा एक और बुरहान के जो कलामी किताबों में और फलसफी किताबों में जिक्र होता है, उसका नाम है बुरहाने हुदूस। बुरहाने हुदूस से दो तीन नुक्ते वाली ये बुरहान भी बहुत ज्यादा इल्म कलाम में जिक्र किया गया है। फलासफा भी इसको जिक्र करते हैं लेकिन इसको कामिल नहीं मानते। ये एक तफसीली व इल्मी गुफ्तगू है कि जो अपनी जगह पर होनी चाहिए, अभी हमारे मद्देनजर ये नहीं है। बुरहान हदूस है क्या? बुरहान हदूस ये है, हादिस कहते किसे हैं? हादिस हम कहते हैं कि ये कायनात हादिस है, मैं हादिस हूं, कायनात की हर चीज हादिस है। क्या माना हादिस है? यानी पहले नहीं थी, अब है। हादिस उस चीज को कहा जाता है कि जो पहले वजूद न रखती हो, बाद में वजूद में आए, उसको कहते हैं हादिस। तो अगर हम कायनात को देखें तो आकल ने भी ये फैसला किया है कि इस कायनात की इब्तिदा है, यानी पहले नहीं थी, बाद में शुरू हुई है। और इस वक्त साइंसी उलूम ने भी साबित किया है कि ये कायनात इब्तिदा रखती है। उन्होंने बकायदा जमाना मुअय्यन किया है कि कितने मिलियार्ड साल पहले, कितने करोड़ साल पहले जो है वो ये कायनात वजूद में आई है। बस मालूम हुआ, इब्तिदा मुशख्खस करने का मतलब ये है कि ये एक जमाने में नहीं थी, बाद में वजूद में आई है, और ऐसी चीज को कहते हैं हादिस। और जो चीज हादिस होती है वो हतमन मोहताज होती है कि उसको कोई ईजाद करे, खुद ब खुद तो ईजाद नहीं हो सकती। खुद ब खुद अगर ईजाद होना होता तो फिर मादूम क्यों थी, पहले से ही मौजूद रहती। बस हर हादिस को मुहदिस की जरूरत है, यानी कि जो उसको ईजाद करे, क्योंकि हादिस बेदूने मुहदिस ईजाद नहीं हो सकती। इस तरीके से आकर इस बुरहान को जो है वो जिक्र करते हैं। खूब, हम कहते हैं कि अलिफ हादिस है, इसको मुहदिस की जरूरत है। कौन है इसको ईजाद करने वाला, इसका मुहदिस कौन है? कहते हैं बा। खूब, हम बा के बारे में सवाल करते हैं, बा क्या है, ये हादिस है या नहीं है? अगर कहें नहीं है, सबत अल मतलूब, हमारा मतलब साबित हो जाता है, ये कदीम है, और कदीम जो है वो ज़ाते वाजिब ताला ही हो सकती है, और हम उसको खुदा कहते हैं। लेकिन अगर कहें कि ना बा खुद भी हादिस है, तो खूब हम कहेंगे जब ये हादिस है तो इसको भी तो मुहदिस की जरूरत है, कोई ईजाद करने वाला हो, इसका कौन है? जीम है। खूब, जीम के बारे में सवाल करेंगे। अगर सबको हादिस मानते गए तो फिर ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं, कोई ईजाद नहीं होगी कोई चीज, तसलसल लाजिम आएगा। और फलसफे में अकली तौर पर यह बात साबित है कि तसलसल मुहाल है, किसी जगह पर रुकना चाहिए इसको, और जहां रुकेगी ये रुकेगा सिलसिला, वो हादिस नहीं होगा बल्कि कदीम होगा, और उस कदीम को हम कलामी एतबार से वाजिब ताला या खुदा कहते हैं। इस तरीके से ये बुरहान कलामी किताबों में जिक्र किया जाता है। अल्लामा ने इसको जिल नंबर 1 सफा नंबर 402 में जिक्र किया है। पहले मैंने अर्ज किया था कि रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ अलमीज़ान के, वो अरबी नुस्खे के हैं। चूंकि अभी तक उर्दू में तर्जमा इसका पूरा नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं उर्दू के हवाले नहीं दे रहा, तो आप दोस्तान खुद जो है वो अरबी की तरफ रुजू करें इसको ढूंढने। अगर फ़र्ज़ करें इसका उर्दू तर्जमा पूरा हो जाता है और कोई बंदा इसकी तरफ रुजू करना चाहता है, खुद मुताला करना चाहता है इन इबारतों का, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अरबी वाली जो नुस्खे को देखेंगे कि अल्लामा ने इस मतलब को किस आयत के ज़िमन में बयान किया है, और आप जो हैं वो उस आयत के ज़िमन में चले जाएंगे और वहाँ जाकर उसको ढूंढ लेंगे और मुताला कर लेंगे। बहरहाल अल्लामा यूं फरमाते हैं जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 402 में, इन्नल इंसान मफ्तूरुन अला अन यअतक़िदा लिकुल्ल हादिसिन मादियन इल्लतन मूजबतन मिन गैर तरद्दुदिन बर्तियाबिन। इंसान खालक ही ऐसा हुआ है कि वो एतिकाद रखता है कि हर हादिस व मादी चीज के लिए कोई इल्लत है कि जो उसको ईजाद करे, इसमें कोई शक को तरदीद नहीं है, कोई भी इंसान इसका मुनकर नहीं है। व कज़ालिक अल उलूम तबीईया वसाइरुल अबहाथ अल इल्मिया तुअल्लिलुल हवादिसा वल उमूर अल मुर्तबिता था बिमा तजिदुहू मिन उमूरिन उखरा सालिहतन लित्तअलील। इसी तरीके से साइंसी उलूम हैं और दूसरी जो इल्मी अबहास हैं वो भी क्या करती हैं, हवादिस की तालील पेश करती हैं, इल्लत बयान करती हैं। एक चीज जो दूसरी चीज से हासिल हुई होती है ये कहते हैं कि ये उसकी इल्लत है। खूब इसी तरीके से ये मतलब जो है वो चलता जाता है, आखिर में यूं नतीजा लेते हैं। इबारत लंबी है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, जो अरबी जानते हैं और फारसी जानते हैं वो खुद उसका मुताला कर सकते हैं। उर्दू में मैंने उसका खुलासा बयान कर दिया है तो किफायत करती है उर्दू दान के लिए। फन नतीजा तो खुलासा ये निकलता है कि अन्न लिहाजल आलम अलमादी, ये जो हमारे सामने है आलम और मादी भी है, मुहदिसन मुहदिसुन, इस आलम मादी का कोई ना कोई मुहदिस है, क्योंकि ये हादिस है, पहले नहीं था अब है, बस इसका मुहदिस होना चाहिए। फइन कानल मुहदिसो कदीमन अजलियन सबत अल मतलूब। अगर वो मुहदिस के जो इस आलम को ईजाद करने वाला है वो खुद कदीम व अजली हो तो हमारा मतलब साबित हो जाता है। व इन कानल मुहदिसो हादिसन ऐजन, इस आलम को ईजाद करने वाला खुद भी हादिस हो, फला बुद्द मिन वजूद मुहदिसिन लहू, तो फिर उसको भी कोई ईजाद करने वाला तो होगा, वो कौन है। व दफ अन लिद्दौर व तसलसल ला बुद्द मिन अल इंतहा इला मुहदिसिन गैर मुहदिस। बस हमें तसलसल से बचने के लिए, दौर से बचने के लिए, मैं इसकी वजाहत नहीं करता चूंकि ये थोड़ी इल्मी गुफ्तगू है, दौर और तसलसल जो है वो बातिल है, क्यों बातिल है ये फिर मतलब जो है वो सख्त हो जाएगा, जो फलसफा जानते हैं या पढ़े हुए हैं उनको इस बात का इल्म है, और जो उर्दू दान जानना चाहता है तो वो मुख्तलिफ किताबों की तरफ जो है वो रुजू कर ले, आसानी से इसकी दलील मिल जाएगी कि दौर और तसलसल क्यों बातिल है। खूब अल्लामा कहते हैं कि हाँ, दौर और तसलसल लाजिम ना आए, बस जरूरी है कि हम एक ऐसे मुहदिस व ईजाद करने वाले तक पहुंचें कि जो खुद मुहदिस ना हो, खुद जो है वो मुहदस ना हो, गैर मुहदसिन, ये इबारत इस तरह होगी, लाबुद्द मिन अल इंतहा इला मुहदसिन गैर मुहदसिन, कि खुद वो मुहदस ना हो, यानी खुद कदीम हो, खुद अजली हो, इस तक पहुंचना हमें जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अकली तौर पर बुतल तसलसुल भी बातिल है, दौर भी बातिल है, वह वल मतलूब, और ये मतलूब है, इसी नतीजे को हम हासिल करना चाहते थे। यहां तक हमारी बहस जो है वो खत्म हो जाती है खुदाबंद मुताल के वजूद को साबित करने वाले बराहीन में। बराहीन बहुत ज्यादा जिक्र किए गए हैं लेकिन हम इसी पर ही इक्तफा करते हैं, अपनी अकली बहस में वारिद होते हैं। इसके बाद अगली बहस जो आती है वो खुद तौहीद है। तसलसुल बहस को आप जरा मद्देनजर रखें, हमने बहस जो शुरू की कि हम साबित करें कि खुदा है, दलीलें जिक्र की, यहां तक अब ये साबित हो गया इल्मी तौर पर कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है, इस कायनात का कोई खालिक है, खुदा है। अब बहस ये शुरू होती है कि खालिक जिसको आपने अभी साबित किया है वो वाहिद है या मुतअद्दिद, एक है या दो तीन चार हैं, ये वाली बहस करना अलग से जरूरी है, इसके ऊपर इस्तेदलाल कायम करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि खुदा है और एक है, खुदा होने को हमने साबित कर दिया, खुदा एक है इसको साबित करने की जरूरत है। अल्लामा एक मतलब की तरफ इशारा करते हैं तफसीर अलमीजान में, वो ये कि तौहीद की अहमियत क्या है। पहला मतलब जो जिक्र करते हैं तौहीद के बारे में वो ये कि ये मसला इंतहाई पेचीदा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, कि इंशाल्लाह ये बाद में इसकी वजाहत आएगी कि तौहीद से क्या मुराद है, तौहीद की कितनी किस्में हैं और खुदा के मौरिद में कौन सी किस्म मुराद है। जब वहां पर ये मतलब बयान होगा तो अल्लामा की इस बात की तस्दीक होगी कि किस तरीके से तौहीद का मसला जो है वो पेचीदा है। फिर उसके बाद अल्लामा बयान करते हैं इसकी अहमियत को, और ये कहते हैं कि बशरियत सआदत तक नहीं पहुंच सकती मगर ये कि वो तौहीद का कायल हो, तौहीद के बगैर बशरियत सआदत तक नहीं पहुंच सकती, इसको बयान करते हैं। मुकदमात की सूरत में मैं इस मतलब को बयान करता हूं ताकि मतलब मुनज्जम तौर पर बयान हो और मतलब समझ में भी आ जाए। क्या दलील है हमारे पास कि तौहीद के बगैर बशरियत सआदत तक नहीं पहुंच सकती? दलील का पहला मुकदमा यह है कि इंसान इज्तिमाई है। आप अपने मुआशरे को देखें, अपने आप को देखें, तो क्या महसूस करते हैं? आया आप तनो तनहा रहकर किसी जंगल के अंदर बैठ करके जहां कोई बशर नाम की कोई चीज ना हो, क्या आप जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या आप अपनी तमाम हाजात व जरूरियात को पूरा कर सकते हैं? नहीं। बाज जरूरियात जिसको आप पूरा कर सकते हैं बहुत थोड़ी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी जरूरियात हैं जिसको आप नहीं पूरा कर सकते। हतमन आप मोहताज हैं इज्तिमा के, मुआशरे के, आप मुआशरती जिंदगी करें, बगैर मुआशरती जिंदगी किए आप अपने हाजतों को पूरा नहीं कर सकते, कमाल तक नहीं पहुंच सकते आप उस वक्त तक जब तक आप इज्तिमा में जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि कई कमाल के जो इंसान ने हासिल करने हैं वो इज्तिमा में आने के बाद हासिल होते हैं। बस इसको बिलविजान इंसान दर्क करता है अपनी जिंदगियों में, अगर इंसान थोड़ा दिक्कत करे तो ये मतलब वाजह है। ये पहला मुकदमा हमारी दलील का। दूसरा मुकदमा, इंसान अब इज्तिमाई है, उसने क्या करना है? उसने अब अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुआशरे के अंदर आना है और अपने मुआशरे में आकर अपनी जरूरियात को हासिल करना है, कमालात को हासिल करना है। बस क्या होगा इसमें, इंसान अपने कमाल के हुसूल के लिए दूसरे को इस्तेमाल करेगा, दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से इस्तफादा करेगा, किसी को जो है वो पैसे देकर काम करवाएगा, इस तरह मुख्तलिफ जो काम है इज्तिमाई, मिसालें आप खुद ढूंढ सकते हैं इसमें। खूब, अब मैं मुआशरे का मोहताज हूं अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, तो दूसरा इंसान भी तो इंसान ही है, वो भी तो मोहताज है आश्रय का, वो भी जरूरियत को पूरा, मुमकिन है एक कमाल हासिल करने के लिए मुझे दूसरे के पास जाना पड़े, और वो भी चूंकि इंसान है मुआशरे का मोहताज है, मुआशरती जिंदगी का मोहताज है, उसका कमाल, उसकी जरूरत, उसकी हाजत मेरे जरिए पूरी होती हो। जब ऐसा है तो यहां टकराव पैदा होने का इम्कान है। यानी मैं अगर कमाल हासिल करना चाहता हूं तो दूसरा अगर कमाल तक नहीं पहुंचेगा तो मुझे कमाल मिलेगा, मेरी जरूरत तब पूरी होगी जब दूसरा अपनी जरूरत ना हासिल कर पाए। बाजू का इस तरह का टकराव हो जाता है, जब टकराव होगा तो यहां झगड़ा होने की खतरा है, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसको मसलन कत्ल करूंगा या इस किस्म की कोई गलतियां करके मैं चाहूंगा कि मैं इस कमाल को हासिल करूं ना कोई और। वही कमाल जरूरत है, वही जरूरत जो है पूरी करना दूसरे की भी जरूरत है, तो वो क्या करेगा, फिर वो भी आएगा। यहां पर खींचातानी शुरू होगी, यहां पे झगड़े होने की जरूरत, झगड़े नजर इम्कान है हो जाए यहां पर। बस जरूरत है कि ऐसे कवानीन मौजूद हों कि जो अदालत बरगुजार करें। ये दूसरा मुकदमा था। तीसरा मुकदमा यह है कि खूब इंसान इज्तिमाई है, इंसान मुआशरती जिंदगी गुजारने का के लिए मजबूर है, और मुआशरती जिंदगी में झगड़ों का खतरा है, बस कवानीन कवानीने आदिला होने चाहिए, अच्छे कानून होने चाहिए। कानून बन गए, खूब कानून बनाकर आया, काम खत्म हो जाएगा? नहीं। बल्कि जिन्होंने कानून को इजरा करना है वो जुर्म का इल्म भी रखते हों, अगर जुर्म का इल्म नहीं रखते होंगे तो फिर इजरा कैसे करेंगे? मुझे पता ही नहीं है कि मतलब मेरे इलाके में कोई जुर्म हुआ है तो मैं जो जिसको कानून इजरा करने वाला बनाया है तो मैं कैसे कानून को इजरा करूंगा? बस कानून जुर्म के बारे में भी इल्म होना चाहिए। ये तीसरा मुकदमा था। चौथा मुकदमा ये था कि मसलन इंसान इज्तिमाई है और इज्तिमा में जिंदगी गुजारने में खतरा लाहिक है कि झगड़े हो जाएं, बस कानून ने आदिल की जरूरत है, कानून ने आदिल होना चाहिए, कवानीन ने मुख्तलिफ आदिल होने चाहिए और उनको इजरा करने वाले होने चाहिए, उनको इल्म होना चाहिए। आया बात खत्म हो जाएगी? नहीं। क्यों? इस वजह से कि इंसान में जब तक अखलाक फाजिला मौजूद नहीं होगा, आप इंसान को जुर्म से जुदा नहीं कर सकते। ये आप आगे भी विजदानी आम रहा है, आप अपने इर्द गिर्द जरा दिक्कत करके देखें। यानी अगर अखलाक ना हो इंसान के अंदर तो कवानीन मौजूद भी हों, इजरा करने वाले मौजूद भी हों, फिर भी इंसान को जुर्म करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अखलाक होगा तो कानून के इजरा में भी सहूलत होगी, और मुमकिन है कानून इजरा करने की नौबत ही ना आए क्योंकि झगड़ा ही नहीं होगा। अखलाक इंतहाई अहमियत का हामिल है यहां पर। एक जरूरत है चीज मेरी और दूसरे की भी वही चीज जरूरत है, खूब यहां पर मैं कुर्बानी दूंगा, दूसरा वो जरूरत तक पहुंचेगा, असल झगड़ा ही नहीं होगा, बात खत्म। जुल्म की नौबत नहीं आएगी अगर इंसान बाफजीलत बा अखलाक होगा। बस कवानीन का होना काफी नहीं है सआदत तक पहुंचने के लिए, बल्कि अखलाक का होना भी जरूरी है। आया काम खत्म हो गया यहां पे? नहीं। क्यों? मुमकिन है कि इंसान इसलिए सरफे नजर कर रहा है इस चीज से कि अगर इस चीज से कि जो मेरी जरूरत है मैं सरफे नजर ना करूं तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा होगा तो मेरी दूसरी जरूरियात भी जाया हो जाएंगी, तो मैं क्या करूं, इससे सरफे नजर कर लेता हूं, अपनी दूसरी जरूरियात पूरी कर लेता हूं। दुनियावी निगाह पैदा होगी उसके अंदर, और जब तक दुनियावी तलब उसकी बाकी रहेगी वो क्या करेगा, वो सरफे नजर कर लेगा, अखलाक का मुजाहरा करेगा। लेकिन जहां उसको ये महसूस होगा कि मेरी दुनिया जो है वो हासिल नहीं हो रही किसी तरीके से, तो क्या आया जुर्म से रुक जाएगा? नहीं। बस अखलाक फाजिला भी काफी नहीं है, मुमकिन है बहुत सारे मसाइल में अखलाक फाजिला काम आ जाए, लेकिन कामिल नहीं है, मुआशरे को कामिल सआदत तक नहीं पहुंचा सकता, बल्कि इसको भी कामिल होने की जरूरत है। एक और चीज की जरूरत है कि जो अखलाक फाजिला के साथ मिले, और फिर ये पूरे का पूरा निजाम जो निजामे कायनात है ये सआदत तक पहुंचेगा, इंसान सआदत तक पहुंचेगा। और वो कौन सी चीज है जो अखलाक फाजला के साथ मिले तो सआदत तक पहुंच जाएगा इंसान हतमन? वो है तौहीद का अकीदा, यानी वो कायल हो, अकीदा रखता हो कि कोई हस्ती है इस कायनात के अंदर कि जो कुदरत रखती है, कादिर मुतलक है, अजली है। अगर मैंने गलत काम किया तो सजा देगा, अगर गलत अच्छा काम किया तो जजा देगा। ये अकीदा रखना इंसान के लिए सआदत का सबब बनेगा, बाकी मुकदमात को मद्देनजर रखते हुए कि जो अभी आपके खिदमत में बयान किए हैं कि कवानीन हों, कवानीन को इजरा करने वाले अच्छे हों, और अखलाक फाजिला मौजूद हो, इनके साथ साथ तौहीद का भी अगर अकीदा होगा तो इंसान अपनी सआदत तक पहुंच सकता है। फिर इस इंसान को कोई सआदत से नहीं रोक सकता। इंसान अपने पूरे मुआशरे में, यानी पूरे मुआशरे के साथ, पूरा इंसानी मुआशरा सआदत तक पहुंच जाएगा अगर वो अकीदा तौहीद रखता होगा। अकीदा तौहीद का रखना ना ये के नाम लेना कि मैं तौहीद का कायल हूं, अमल में तौहीद को दिखाए, इस तरीके का अकीदा वो इंसान को सआदत तक पहुंचाएगा। बस अल्लामा ने यहां तक ये साबित किया कि तौहीद का अकीदा है कि जो इंसान को, बशरियत को सआदत तक पहुंचा सकता है। अगर तौहीद का अकीदा ना हो तो इंसान को सआदत नहीं मिल सकती, मुमकिन है बाज़ जगह पे हासिल कर ले, लेकिन मुतमइन नहीं हो सकते आपके हर मैदान में सआदत तक पहुंचेंगे। लेकिन तौहीद का अकीदा आपको हर मैदान में सआदत तक पहुंचाएगा। ये था मतलब कि जो जनाबे अल्लामा तबातबाई ने तफसीरे अल मीज़ान में बयान किया है तौहीद के अकीदे की अहमियत के अंदर। खूब इसकी चंद इबारतें पढ़ लेते हैं। पहला मुकदमा क्या है कि इंसान कमाल और सआदत तक नहीं पहुंच सकता मगर इज्तिमा व ताउन के जरिए। इस मुकदमे को जनाब अल्लामा ने सफा नंबर जिल नंबर 1 और ना जिल नंबर 11 और सफा नंबर 155 में जिक्र किया है। फरमाते हैं कि इन्ना मिनल मालूम अन्नल इंसान ला यतिम्मु कमालुहु नौई वला यसअद फी हयातिही अल्लती ला बुग्यत लहू अअज़म मिन इसआदिहा باجتماع من أفراد يتعاونون على أعمال الحياة على ما فيها من الكثرة والتنوع। वाज और रोशन है कि इंसान अपने कमाल नोई तक नहीं पहुंच सकता और अपनी जिंदगी में सआदत हासिल नहीं कर सकता, मगर कब हासिल करेगा कि जब वो इज्तिमा में होगा ऐसे अफराद के साथ कि जो उसकी मदद करेंगे जिंदगी के आमाल पर और कसरत और तनव्वो के होते हुए, यानी बहुत सारे इस तरह के हाजात और ये चीजें पाई जाती हैं। फल इंसान बिमुफरद ही ला युमकिन अन यली है जमी हाजात ही, इंसान अकेला तमाम हाजात को हासिल नहीं कर सकता। दूसरा मुकदमा इस तरीके से बयान करते हैं कि जब इज्तमाही है पस कवानीन आदिला का वजूद जरूरी है, वो इस तरीके से मतलब को बयान करते हैं इसी सफ़े के ऊपर। फरमाते हैं कि मिम्मा अहवज अन अन अल इंसान अल इज्तमाई इला अन यतसनन बिस्सुनन व कवानीन यहफ़ुज बिहा हुकूक अल अफराद अन ज़ैअति वल फसाद, के इंसान इज्तमाई फिर क्या करे, कवानीन को बनाए, सुन्नतों को बनाए कि जिनके जरिए वो अफराद के हकूक की हिफाजत का किया, ताकि उन कवानीन के जरिए अफराद के हकूक की हिफाजत की जाए, ताकि वो जाया ना हो, फासिद ना हो। हत्ता या अमल कुल्लु मिनहुम माफी वुसही अल अमल बही, ताकि हर इंसान जितनी उसकी वसअत में उस पर अमल कर सके। सुम्मा युबादलू अमालहुम, फिर अपने अमलों को मुबादला करें, करें एक दूसरे के लिए काम करें ताकि एक दूसरे की हाजत को पूरा कर सकें। फयनालु कुल्लु मिनल नताइज अल मुइद्दा मा युआदिलु अमलहु व यक़दिरहु वज़नहु अल इज्तिमाई, ताकि वो क्या करें, उन इन नताइज के जरिए, अपने अमल के जरिए जो है वो अपने उन नताइज तक पहुंच जाए। मिन गैर अन यज़लिम अल क़वी अल मुक़्तदिर, बगैर इसके कि कोई कवि उसका कवि जुल्म करे। व यज़लिम अज़ ज़ईफ अल आजिज़, और ज़ईफ़ आजिज़ जो है उस पर कोई जुल्म किया जाए। ले लिखे यनाल कुल्लु ज़ी हक़्किन हक़्क़हू, ताकि हर साहिब हक अपने हक तक पहुंच जाए। जल्दी जल्दी मैं तर्जमा मफहूमी कर रहा हूँ ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे। मुकदमे सालिसा क्या है कि कवानीन जो हैं उस वक़्त तक अपना समर नहीं दे सकते जब तक कि इजरा करने वाली कुव्वतें मौजूद ना हों, और वो फिर आलिम बे जुर्म ना हो, हतमन आलिम होना चाहिए उनको। फरमाते हैं कि इल्ला बिसुनन व कवानीन उखरा जजाइया तुहद्दिद अल मुतखल्लिफीन अने सुनन वल कवानीन, फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे सुनन व कवानीन जजाई होने चाहिए कि जो मुतखल्लिफ और खिलाफ वर्जी करने वाले और जो कवानीन का ख्याल नहीं रखते उनको डराए, के डराए अनिसोनने वल कवानीन मुतअद्दीना अला हकूक ज़विल हकूक व तुखव्विफुहुम बिस्सैयअति क़िबाल अस्सैयअ, के जो खिलाफ वर्जी करते हैं कवानीन की उनको डराए, और जो बुराई करते हैं उनको बुराई के मुकाबले में खौफ दिलाए। व बे उखरा तुशव्विक़ुहुम व तुरग़िबुहुम, और दूसरे कवानीन के जरिए वो उनको तशवीक दे, तरगीब दे। फी अमल खैरात, ताकि वो अमल खैरात नेक अंजाम दे। व तुजम्मिन इजरा अल जमी अल इजरा अल जमी अल कुव्वतुल हाकिमा, और कुव्वा हाकिमा जो है वो जमानत दे कि वो इसको इजरा करेगी। अल्लती तहकुम फीहिम व तुसैतर अलैहिम बिल अदल व सिदक, और जो हुकूमत करती है उनके ऊपर ये सारा काम करे। बिल अदल व सिदक, आदिलाना काम करे, सच के साथ जो है वो काम करे। ये तीसरा मुकदमा था कि जो बयान किया। चौथा मुकदमा कहते हैं कि पस फकत कवानीन का होना काफ़ी नहीं है बल्कि अखलाक फाजला भी हो, वो यहाँ से वो बयान करते हैं। व इन खानत आदिला तनफी हदूद मफाहिम हा व अहकाम जजा व इन खानत बालगा तनफी शिद्दत हा ला तजरी अला रसूल हा फिल मुजतम, फरमाते हैं कि कवानीन अगरचे आदिलाना ही क्यों ना हो, अगरचे वो अपनी शिद्दत के अंदर बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, तो कहते हैं कि ये मुजतम में अगर जारी होंगे तो ये खिलाफ और तखल्लुफ को रोक नहीं सकते। वला तुसद्द बाबुल बाबल खिलाफ व तरीक तखल्लुफ इल्ला बे अखलाक फाजिला, ये चीज़ें ये कवानीन आदिल होने के बावजूद भी जो हैं वो खिलाफ और खिलाफ वर्जी को तखल्लुफ को नहीं रोक सकते, मगर कब, कि जब उनके अंदर अखलाक फाजिला इंसानिया मौजूद हो। कि तुकत्ते दाबर जुल्म वल फसाद, के वो अखलाक फाजिला है कि जो जुल्म फसाद को ख़त्म करेगा। का मलकत इत्तबाइल हक, जैसा कि इंसान में अगर हक की इत्तबा करने का मलका पैदा हो जाए। वाहतराम इंसानियत वल अदाला, इंसानियत का एहतराम करने का मलका पैदा हो जाए, अदालत पैदा हो जाए उसके अंदर, करामत उसके अंदर हो, हयात उसके अंदर हो, और इस तरह की बाकी चीज़ें चीजें होंगी तो इंसान जो है वो मजीद बेहतर अंदाज में काम करेगा और सादत तक पहुंच सकता है। पांचवा मुकदमा यह है कि अखलाक फाजिला भी काफी नहीं है बल्कि तौहीद की जरूरत है। फरमाते हैं लम यब कलिल इंसान हम इल्ला मुराकबत रिजा तआला फी आमालही, कि इंसान जब तक तौहीद का अकीदा ना रखे उस वक्त तक सआदत तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर तौहीद का अकीदा रखेगा तो इंसान उस खुदा की रिजायत के लिए मुराकबत करेगा, महफूज रहेगा और नेक आमाल अंजाम देगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वकानत तकवा राद अंदाखलियन लहू, और तकवा क्या होगा, वो उसके अंदरूनी माने होगा, यानी उसके अंदर का अंदर एक ऐसी चीज है कि जो रोक रही है उससे उसको अन इर्तिकाब जुर्म के वो जुर्म का इर्तिकाब ना करे। व लौला इर्तिजा अल अखलाक मिन सद हाज़िह अल अकीदा लम यबक़ा लिल इंसान गायतुन फी अमालिहि अल हयविया इल्ला अत्तमत्तु बिमताअ दुनिया अल फानिया। खूब हम कोई आकर कहता है कि क्या जरूरत है कि अखलाक जो है वो अकीदा तौहीद के साथ मिले तब जो सादत तक पहुंचे, ना अखलाक जो है वो इंसान को सादत तक पहुंचा देगा अगरचे वो तौहीद का कायल ना भी हो। फरमाते हैं ना, अगर अखलाक ने अखलाक का सरचश्मा अकीदा तौहीद ना हुआ तो फिर इंसान की जो हदफ और गायत अपनी जिंदगी में बन जाएगी वो फकत दुनिया के जो फानी है उसको हासिल करने का हदफ होगा उसका, यानी फकत दुनिया का हुसूल होगा, फकत जो है दुनियादारी होगा उसका हदफ। उस दुनियादारी के हुसूल में वो अखलाकी कवानीन के तहत अमल कर रहा होगा। खूब, लेकिन इस्लाम जो है वो दुनियादारी का दर्स नहीं देता। वतलज़्ज़ुज़ बिलज़ाइज़ अलहयात अलमादिया, वो फकत महदूद हो जाएगा मादी जिंदगी की लज्जतों में, खूब मानवी जो लज्जतें हैं उससे रह जाएगा, बाज़ लज्जतें वो हासिल नहीं कर पाएगा, और मुमकिन है कि फिर बाद में वो ऐसा काम करे कि जो तौहीद के अपना अखलाक के मुनाफी भी हो जाए। इबारत बहुत लंबी है, मैं सारी इबारत को नहीं पढ़ता, बस यहां से अल्लामा नतीजा ये लेते हैं कि तौहीद के बगैर इंसान सआदत तक नहीं पहुंच सकता, तौहीद इंतहाई अहमियत की हामिल है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।